हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शाम के वक्त आराध्या और नव्यांशी ऑफिस से घर वापस लौट चुकी थीं। दो दिन बाद उदयपुर में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला था। नव्यांशी ने उन तीनों के लिए कॉन्सर्ट में जाने के लिए टिकट बुक किए थे। इसी बहाने नव्यांशी अपना और शिवांशा का रिश्ता सुधारना चाहती थी। शाम को घर आते ही वो सीधे शिवांशा से बात करने जाना चाहती थी। हालांकि आराध्या ने उसे कुछ देर इंतजार करने को कहा, लेकिन नव्यांशी वेद के आने से पहले ही शिवांशा से बात करना चाहती थी। अगर वेद को इस कॉन्सर्ट में जाने के बारे में पता चलता तो वो कभी हाँ नहीं कहने वाला था। नव्यांशी और आराध्या शिवांशा के कमरे में पहुंची, तब शिवांशा परेशानी में इधर उधर टहल रही थी। अचानक उन्हें सामने देखकर शिवांशा के चेहरे पर हल्के घबराहट के भाव उभर आए थे। वो जानती थी कि नव्यांशी तो उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी। अगर वो इस तरह उसके कमरे में चलकर खुद आई थी तो जरूर उससे कोई गलती हुई होगी। आप इस तरह कमरे में टहल क्यों रही हैं? भाई ने बताया था कि आप अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए भाभी, नव्यांशी अंदर आते हुए काफी प्यार भरे लहजे में बोली। मैं ठीक हूं, वो बेवजह मेरी इतनी फिक्र करते हैं, शिवांशा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। ऐसा नहीं है भाभी, आराध्या उसके पास आकर बोली। भाई हर चीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर उन्होंने कहा है कि आप पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं और आपको रेस्ट की जरूरत है तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, वैसे भी आपका जल्दी रिकवर करना जरूरी है, वरना हम कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर पाएंगे। पहली बार मेरा फेवरेट सिंगर इन्फ्लुएंसर उदयपुर आ रहा है, मैं मिस नहीं करना चाहती, नव्यांशी थोड़ा एक्साइटेड होकर बोली। कॉन्सर्ट? शिवांशा ने उलझन भरे स्वर में पूछा। हाँ कॉन्सर्ट, आराध्या ने जवाब में कहा। दो दिन बाद उदयपुर में एक कॉन्सर्ट होने वाला है जहाँ काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। बहुत मुश्किल से नव्यांशी ने हम तीनों के लिए टिकट बुक की हैं, लगभग सारे स्लॉट भर चुके थे। हम आपके बिना ये इवेंट अटेंड नहीं करना चाहते, तो प्लीज आप जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाइए। आराध्या भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कितना मजा आएगा ना जब हम तीनों गर्ल्स साथ में पार्टी करेंगी, नव्यांशी आगे बोली। वो दोनों एक्साइटेड होकर शिवांशा को सब कुछ बताए जा रही थीं, तो वहीं कॉन्सर्ट में इस तरह रात को जाने के बारे में सुनते ही शिवांशा परेशान हो गई थी। इतने दिनों में वो वेद को थोड़ा बहुत समझने लगी थी। शिवांशा इतना तो जान ही गई थी कि वेद को ये कभी पसंद नहीं आएगा। इस तरह के इवेंट में अक्सर बहुत भीड़, ड्रिंक्स और बेकार सा माहौल होता था। शिवांशा ने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, नहीं मैं आपके साथ नहीं जाने वाली, उन्हें पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे, और मैं तो कहती हूँ आप लोग भी मत जाइए, उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको पार्टी करनी है तो हम सब साथ में किसी अच्छी जगह पर चलते हैं, शिवांशा उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बोलते हुए बीच में रुक गई क्योंकि नव्यांशी और आराध्या जोर जोर से हंसने लगी थी। उनके हंसने पर शिवांशा ठिठक गई थी और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। मतलब आप उन्हें अच्छे से जानने लगी हैं, नव्यांशी ने हल्का मुस्कुराकर कहा। हाँ उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर उन्हें बताने वाला कौन है, कई बार कुछ काम छुपकर भी कर लेना चाहिए, वैसे भी हम कौन सा गलत करने जा रहे हैं, भाई ने ही कहा है कि अगर हम कुछ गलत ना करें तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। शिवांशा ने जल्दी से नव्यांशी की तरफ देखा और भौहें उठाकर कहा, जब आपको पता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप क्यों जा रही हैं, आपको जाना है तो आप चली जाइए, लेकिन मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकती हूँ। वो दोनों नहीं जानती थीं, लेकिन बहुत मुश्किल से शिवांशा और वेद का रिश्ता थोड़ा बहुत सुधरा था। ऐसे में शिवांशा नहीं चाहती थी कि उससे ऐसी कोई गलती हो जिसकी वजह से वेद का दिल दुखे। शिवांशा को परेशान देखकर आराध्या ने उसका हाथ सहलाकर कहा, आप इतना डर क्यों रही हैं, वो इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बस हमारी परवाह करते हैं, वैसे भी हम पूरी रात बाहर नहीं रुकने वाले हैं, सिर्फ दो घंटे इवेंट अटेंड करेंगे और रात के 9-10 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैंने वंश से भाई का शेड्यूल पता किया है, जिस दिन कॉन्सर्ट होना है उस दिन वो लेट नाइट तक काम करने वाले हैं। हाँ और हम टाइम से घर आ जाएंगे, अक्षत है ना हमारी हेल्प करने के लिए, वो हमें ड्रॉप कर देगा और वापस भी ले आएगा। चलिए अब आप इस बारे में भाई से बात मत कीजिएगा और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप उनसे परमिशन लेंगी तो वो हाँ कर देंगे, उल्टा उनके चक्कर में हमारा प्लान खराब होगा और वो डांटेंगे अलग से। नव्यांशी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि कहीं शिवांशा अपने बचपने में कोई गलती ना कर दे। उन लोगों ने शिवांशा को बुरी तरह फंसा दिया था, वो उन्हें मना करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वेद से छुपाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोनों शिवांशा को कॉन्सर्ट में कपड़े पहनने से लेकर ग्रूमिंग के लिए सैलून में अपॉइंटमेंट लेने तक के सारे अरेंजमेंट कर चुकी थी। बाहर से गाड़ी की आवाज़ आने पर आराध्या ने कहा, लगता है वो लोग भी ऑफिस से आ गए हैं, ठीक है आप रेस्ट कीजिए, अगर डिनर करने नीचे आना है तो बता दीजिएगा, वरना मैं रानी को बोलकर ऊपर भिजवा दूंगी। नव्यांशी और आराध्या वहां से निकल गई थी। उनके जाते ही शिवांशा जल्दी से काउच पर बैठी और उसने अपना सिर पकड़ लिया था। इन दोनों को कहीं जाना है तो शौक से जाए ना, मुझे क्यों मुसीबत में डाल रही हैं, अगर गलती से भी वेद को इस बारे में पता चला तो वो अपनी बहन और भाभी को कुछ नहीं कहेंगे, मुझे ही डांट सुनने को मिलेगी कि मैंने उन्हें बताया नहीं, शिवांशा खुद से बड़बड़ाकर बोली।
अपनी परेशानी में शिवांशा इस कदर खोई हुई थी कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि वेद कमरे के अंदर दाखिल हो चुका है। शिवांशा को इस तरह सोफे पर सर पकड़कर बैठा देखकर वेद उसके पास गया। क्या हुआ, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? मेरे जाने के बाद भी रेस्ट नहीं किया ना तुमने, तभी इस तरह थकी हुई सी परेशान लग रही हो, वेद भी सख्त आवाज में कहा। शिवांशा ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और नामे सिर हिला दिया था। वेद उसकी इतनी परवाह कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, तो शिवांशा के दिल में और गिल्ट फील होने लगा था। वो कुछ भी गलत करके उसे शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी, तब अपने आप हाथ सर पर चला गया। आप कब आए? शिवांशा ने उठते हुए पूछा। वही तो, ऐसा क्या सोच रही थी जो तुम्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं कब आया? वेद ने उसे घूरते हुए पूछा। शिवांशा कोई जवाब देती उससे पहले वेद खुद ही बोल पड़ा। खैर छोड़ो, डिनर के लिए नीचे चलोगी या फिर ऊपर ही मंगवा दूं? नहीं, ऊपर ही ठीक है, शिवांशा ने जल्दी से जवाब दिया। शिवांशा जानती थी कि अगर वो डिनर करने के लिए नीचे गई तो फिर वेद को ऊपर खाना खाना पड़ेगा। पहले यही तो होता था, वेद शिवांशा के आसपास रहना कम पसंद करता था। अगर शिवांशा उनकी फैमिली के साथ होती तो वो अपनी फैमिली तक को इग्नोर करने लगता था। शिवांशा के इस जवाब का कारण वेद खुद भी समझता था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, फिर मैं रानी को बोल देता हूँ कि वो मेरा खाना भी ऊपर लेकर आ जाए। लेकिन आप ऊपर खाना क्यों मंगवा रहे हैं? आप तो अपनी फैमिली के साथ खाना खाते हैं ना? शिवांशा ने हैरानी से पूछा। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे आज से पहले मैंने तुम्हारे साथ डिनर ना किया हो। चलो अब ये सवाल पूछना बंद करो और फ्रेश हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, रानी को बोल देता हूँ कि वो खाना लेकर ऊपर आ जाएगी, वेद ने जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया।
वेद पहले देवराज की वजह से शिवांशा से नफरत करता था, लेकिन उसके साथ रहते हुए वेद को इतना तो पता लग गया था कि देवराज की इस हरकत की वजह से शिवांशा ने भी काफी कुछ झीला है। उसकी जिंदगी किसी भी तरह से आसान नहीं रही थी और वो हमेशा डर के साए में बड़ी हुई थी। वेद अब देवराज की गलती की सजा रोहन और शिवांशा को देकर खुद की नजरों में गिरना नहीं चाहता था। जहां वेद अब अपनी तरफ से शिवांशा की हर तरह से केयर कर रहा था और उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं शिवांशा को अब भी यही लगता था वेद अगले 4 महीने बाद उसे मार देगा। वो बस अपनी फैमिली को दिखाने के लिए उसके साथ खाना खाने और हैप्पी मैरिड लाइफ का दिखावा कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद वेद ऊपर आया, तब तक शिवांशा फ्रेश होकर तैयार थी। वेद ने चेंज किया और बाहर आया, इतनी देर में रानी उन दोनों के लिए खाना लेकर आ गई थी। रानी के जाने के बाद जैसे ही वेद ने शिवांशा के खाने के ऊपर से प्लेट हटाई तो उसका मुंह बन गया था। डॉक्टर के कहे मुताबिक वेद उसे बहुत लाइट खाना दे रहा था और अब उसके लिए डिनर में खिचड़ी बनी थी, जिसे देखकर उसका ये हाल था। मुझे भूख नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, शिवांशा ने बहाना बनाते हुए कहा। वेद ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बौहें उठाकर बोला, रियली बहाने बनाना बंद करो, मैंने आते ही रानी से पूछा था, उसने यही कहा था कि तुमने लंच भी ठीक से नहीं किया था। हाँ, क्योंकि मुझे ये सब नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन मुझे फीका दलिया खिचड़ी खाना पसंद नहीं है। मैंने कभी खाने को लेकर नखरे नहीं किए, पर यकीन कीजिए इन्हें देखकर ही मुझे उल्टी आती है। प्लीज़ मुझे आप अपना खाना खाने दीजिए, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, शिवांशा प्लीडिंग वॉइस में बोली। ठीक है, फिर मेरा खाना खा लो, वेद ने कंधे उचकाकर कहा। वेद इतनी आसानी से मान गया था ये देखकर शिवांशा को हैरानी जरूर हुई थी, लेकिन अगले ही पल फिर से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। वेद ने अपने खाने से प्लेट हटाई तो उसने देखा वेद के लिए भी वही खिचड़ी आई थी। आपको ये सब खाने की क्या ज़रूरत है, आप तो ठीक है ना, शिवांशा ने धीमी आवाज़ में पूछा, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारे सामने बैठकर मैं अच्छे अच्छे पकवान खा रहा हूँ। चलो जल्दी से ख़त्म करो, मैं भी तुम्हारे लिए एडजस्ट कर रहा हूँ, अब मुझे कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं चाहिए, तुम बच्ची नहीं हो जो मुझे तुम्हें तुम्हारी हेल्थ के लिए ज्ञान देना पड़े, वेद ने इस बार काफ़ी सख्त लहजे में कहा और शिवांशा को खाना खाने का इशारा किया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, मजबूरन शिवांशा को वो खिचड़ी खानी ही पड़ी। हाँ, खाते वक्त वो अजीब अजीब चेहरे बना रही थी। खाते हुए वेद बीच बीच में नजरें चुराते हुए शिवांशा की तरफ देख रहा था और इस तरह मुंह बनाते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। वेद के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वहीं नीचे डाइनिंग टेबल पर बाकी चौहान फैमिली डिनर कर रही थी और उन्हें रानी से ये पता चला कि वेद ने अपने लिए भी खाने में खिचड़ी मंगवाई है, तो वो हक्के बक्के से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रानी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई ना, वंश बोला, भाई खुद भी बीमार होने पर कभी खिचड़ी नहीं खाते हैं और वो भाभी के लिए खिचड़ी खाने को मान गए। हाँ वही तो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, प्यार किसी को इतना बदल देता है इसका अंदाज़ा नहीं था। आजकल की जनरेशन के लिए ये सब आसान होता है, पर वेद भैया कभी दिखावा करने में और ये सब क्यूट चीज़ें करने के आदी नहीं है, आराध्या ने जवाब दिया। देखो तो, यहाँ किसी कपल को हमारे न्यू कपल से जेलस फील हो रही है, वेद भैया हमेशा हमारे आइडियल रहे हैं, आप दोनों को उनसे कुछ सीखना चाहिए, उम्र में भैया बड़े हैं और भाभी काफ़ी छोटी, इतना गैप होने के बावजूद भी उनका रिलेशनशिप काफ़ी रोमांटिक है और आप दोनों ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे शादी को 50 साल बीत गए हों, अक्षत ने उन्हें परेशान करने के लिए कहा, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी।
हमेशा जब भी अक्षत कुछ ऐसा कहता था तो वंश के साथ साथ नव्यांशी भी उसे डांटने लगती थी। लेकिन इस बार नव्यांशी ने अक्षत का साथ देते हुए कहा, वैसे अक्षत कुछ गलत नहीं कह रहा है, आपको भी अपने रिलेशन को थोड़ा लाइटन करने की जरूरत है। आई थिंक आपको कोई ट्रिप प्लान करनी चाहिए, या फिर इस मामले में आप वेद भैया की एडवाइस भी ले सकते हैं। आज हमारे घर के दो हिटलर ने मुझे सदमा देने का मूड बना लिया है, पहले वेद भैया तो अब आप। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? आप वेद भैया और शिवांशा भाभी के रिलेशन की साइड ले रही हैं? अक्षत आंखें बड़ी करके बोला। नव्यांशी ने उसके हाथ पर हल्का सा मारा। वो सब वेद की इस हरकत पर हैरान जरूर थे, लेकिन साथ ही खुश भी। शिवांशा के लिए वो अपनी सख्ती को भूलकर उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहा था, जबकि पहले उसके भाई बहन जब भी बीमार होते तो उन्हें सादा खाना खिलाने के लिए उसने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की थी। वो उनकी बात एक बार में ही मान जाया करते थे। अगली सुबह हमेशा की तरह नव्यांशी अपने काम के लिए गई थी। वो डिजाइनिंग की फील्ड में अपना खुद का बड़ा ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहती थी। उसके लिए उसे वेद को पूरा ड्राफ्ट और अपना आइडिया प्रेजेंट करना था ताकि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके। वहीं लीला ने पहले ही नव्यांशी के बारे में पता लगा लिया था कि आज वो अपनी रिसर्च के लिए कहाँ जाने वाली है। नव्यांशी जब गाड़ी से बाहर निकली तो उसके सामने लीला अपनी गाड़ी से सटकर खड़ी हुई थी और उसके हाथ में वो एल्बम था जो कल गीतिका ने उसके लिए ढूंढ निकाला था। अपने सामने लीला को देखकर नव्यांशी ने आइज रोल की और उसकी तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में कहा, लगता है आज मेरा दिन फिर से बर्बाद होने वाला है। काम पर जाने से पहले आपका मनहूस चेहरा जो देख लिया, अगर तुम्हारा दिन बर्बाद हो तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना। मनहूसियत की दुकान को तो तुम अपने घर पर लेकर बैठी हो। अब तक मैं कुछ भी कहने की कोशिश करती तो ना तो मुझे बोलने दिया जाता था और ना ही मुझ पर यकीन किया जाता था। तो आज मैं पूरे सबूत के साथ तुम्हारे पास आई हूँ, इसे देख लो और फिर खुद फैसला करो कि कौन ज़्यादा मनहूस है। लीला तिरछा मुस्कुराते हुए बोली और अपने हाथ में पड़ा हुआ एल्बम उसने नव्यांशी की तरफ कर दिया था। मुझे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानती हूँ कि आप मेरी भाभी के बारे में भला बुरा कहने के लिए ही आई होंगी। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, नव्यांशी बोली और वहां से जाने को हुई। तभी लीला उसके आगे आ गई थी। लीला ने जबरदस्ती एल्बम को खोलकर नव्यांशी के सामने किया और बोली, एक बार इसे देख लो, फिर तुम्हें खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि मैं उस लड़की से इतनी नफरत क्यों करती हूँ। वो इसी नफरत के काबिल है। जिस लड़की को तुमने सर आंखों पर बिठा कर रखा है वो इसके लायक नहीं है, ये तुम्हें इस एल्बम को देखने के बाद समझ आ जाएगा। लीला ने जानबूझकर एल्बम को नव्यांशी के सामने पूरा खोलकर आगे किया था ताकि वो चाहकर भी उसे इग्नोर न कर पाए। तो वहीं लीला को जवाब देने के लिए नव्यांशी ने उन तस्वीरों को देखने का फैसला कर लिया था।